oils, one full service sailing style, 10W30 synthetic, $B discount, $5W30 $40 discount, offer limited time lay, $5W30 quick start or oil flow, thande mausam vich jeetu, 10W30 engine di karguzari nu banaye rakhda, QTL di tin locations te pujjo aur lab chakko, exit 268 Cambridge, exit 579 Napanee, exit 5 Fort Erie, Petro Canada or QTL, balle balle, anutha saak.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुके है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 905-874-7171
हौसीट महल ते साथ दियारो दुनिया होई दीवानी हो शुद्ध खोए दी जे मिठी आई रज रज के तुसी खानी नॉन वेज ते वेज फूड दा स्वाद बड़ा तूफानी साडे स्वीट महल दा लभना नी कोई सानी
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਖਾ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ 416-609-3991 ਤੇ 416-679-9191
ट्रक ड्राइवर भाइयों अब यूएस और कनाडा में अनलिमिटेड डाटा वीवो टेलीकम्युनिकेशंस के साथ फुल स्पीड नो रुकावट सफर बिजनेस का हो या शौक का वर्ल्ड वाइड ई सिम डाटा प्लान के साथ इंटरनेट हमेशा रेडी ट्रैवल कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान या हज या उमरे के लिए वीवो टेल के साथ हमेशा रहो ऑनलाइन दूर दराज इलाका कोई प्रॉब्लम नहीं घर हो या केबिन वीवो टेल की हाई स्पीड इंटरनेट चलती है दुनिया के किसी भी कोने में विजिट करें vivotel.com या कॉल करें 416-243-9836 कनेक्शन आपका दुनिया के साथ
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨਵਾਂ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਹਾਲ 100 ਤੋਂ 600 ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੱਡੀ ਆਸਾਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸਵੀਟ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ 416-736-6820 416-736-6820
ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੋਹਰੀਦਾ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਸਟ ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਆਇਲਸ ਫਿਲਟਰਸ ਇੰਜਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ QTL ਐਗਜ਼ਿਟ 268 ਹਾਈਵੇ 401 ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਹਾਈਵੇ 401 ਨਾਪਨੀ ਐਗਜ਼ਿਟ 5 QEW ਫੋਰਟ ਏਰੀ ਸਰਵਿਸ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂ QTL 519-622-0660 ਜੋ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਵੇ
Universal promotion and Amar Shamsi. 1, 2, 3. Now the first annual Burlington Halal Food Festival.
18 aur 19 July ko, jahan perform karenge Ali Haider, Durrani Ji, aur Salim Javed. आपने पहुंचना है लसेल पार्क बर्लिंगटन जुलाई 18 और 19 फन फूड एंड एंटरटेनमेंट
फ्री एडमिशन फ्री पार्किंग फॉर स्पॉन्सरशिप एंड बूथ कॉल योर ओन यूनिवर्सल प्रमोशन अमित शमसी 416-662-7861
राजधानी कोई मांगे मीठा कोई कहे नमकीन एक बात तो पक्की है
सब है इसके शौकी राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
ये है राजधानी
स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhaniswits.ca।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल।
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन।
इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज, चांदनी बैंक्वेट हॉल। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल टुडे एट 9054588888, 9054588888, और विजिट chandnivictoria.ca।
क्या आप ढूंढ रहे हैं असल शनवारी जायका? तो आइए शाहीन शनवारी कढ़ाई एंड बारबेक्यू, जहां ताज़ा मसालों से तैयार की जाने वाली लजीज कढ़ाई, बारबेक्यू, पाकिस्तानी और अगवान पकवान आपके मुंतजर हैं। 100 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश, जहां आप अपनी गेट टुगेदर, बर्थडे पार्टीज और खसूसी तकरीबात के लिए बेहतरीन इंतखाब है। तो आपने पहुंचना है 4190 किंगस्टन रोड, स्कारब्रो। कैटरिंग या डाइनिंग के लिए कॉल करें 6474388571, 6474388571। शाहीन शनवारी कढ़ाई एंड बारबेक्यू।
गाड़ी में शोर, ब्रेक कमजोर, चेक इंजन लाइट ऑन।
चिंता न करें, स्कारब्रो में काबिले इत्मीनान ऑटो शॉप, एको ऑटो वर्क्स, ऑयल चेंज, ब्रेक, इंजन डायग्नोस्टिक, एसी रिपेयर, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुकम्मल सर्विस, एनवायरमेंट फ्रेंडली बॉडी वर्क, यस कार पेंट्स के लिए माहिर टेक्नीशियन, मायारी काम। विजिट कीजिए 2110 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट इन स्कारब्रो। कॉल कीजिए 4167011234, एक्को ऑटो वर्क्स।
फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज या फिर होवे लोन, सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन।
416-502-8000, स्ट्रेस चाहे लख दा होवे या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
कैलेडन सब्जी फार्म, एयरपोर्ट कंट्री साइड कैलेडन, हर तरह की सब्जी, मिर्चा, कद्दू, करेले, भिंडी, टिंडे, गोल कद्दू, बैंगन, टमाटर, प्याज, हर तरह की पनीरी सब्जी, घर दी ते बचत बेगम साहिबा दी। इतो इलावा फ्रूट ट्रीज, ऑर्गेनिक खाद, शीप मेन्योर, काओ मेन्योर और हर तरह के गार्डनिंग टूल, इंडियन तंदूर, चारपाई, मूड़े, मंजे, ताजा ताजा रोटी। 12050 एयरपोर्ट रोड, 9058409000। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे फार्म मुजफ्फर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वी डू हैव सर्टन इश्यूज एट द मोमेंट। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लोग प्रोग्राम पे, आप अपने दोस्त अहबाब को भी जरूर बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन दिस। हर तरफ ही मसाइल हैं कनाडा में, आपको बताया, जैसे ऑन्टेरियो भी वही आग के धुएं की जद में है। एंड वो लोग जो किसी किस्म की अस्थमा या सिकनेसेस में मुब्तला है, ऑफकोर्स इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम एज वेल। बाहर निकलें तो आप मास्क जरूर पहनिएगा। कल तो बिल्कुल एशेज जो हैं वो राख आपको अपनी गाड़ियों पे भी नजर आई होगी। मैं आज पुराने पाक की एक आयत देख रही थी कि अल्लाह ताला ने कंकरों की बारिश भी की, अल्लाह ताला ने तेजाब की बारिश भी की। ऑफकोर्स उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम प्रूव भी कर सकते हैं। फिर चिंगाड़ों का भी जिक्र है, कौमों को डुबोया भी गया। ऑफकोर्स हमारे भी कोई, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है। जितने मुसलमान हैं कोई भी दूध का धुलावा नहीं। अब तो हम जक़ात में भी बेईमानी करने से बाज नहीं आते। एंड अगेन हम सारे के सारे जब गलत काम या चोरी करते हैं तो अगर कोई एक चेक करने वाला आता है तो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होकर भी बैठ जाते हैं, बिकॉज वी लुक फॉरवर्ड व्हाट इज इन इट फॉर अस। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप साथ आवाज में, आपके साथ आरिफा मुजफ्फर, 9 बजे तक हमारा आपका साथ रहेगा। ऑफकोर्स स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जो इस काबिल करते हैं कि हम आपके साथ प्रोग्राम शेयर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में यकीनन मैं आपके साथ जब बात करूंगी, यू बेटर कॉल आमिर नाउ, जब मैं आपसे बातचीत करूंगी तो आज के प्रोग्राम में अभी से थोड़ी देर बाद हम आपको आपको लेकर के चलेंगे एजेक्स पिकरिंग में। और क्विकली मैं थोड़ा सा हाईलाइट आपको जरूर दूंगी। तकरीबन 3:20 पे मैं आपको पाकिस्तान लेकर के चलूंगी और पाकिस्तान से हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरेज सालिक हमारे साथ होंगे। ही इज रिटायर्ड बट रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर एंड द प्रोमिनेंट डिफेंस एंड प्रोमिनेंट एनालिस्ट हैं। कमीशन्ड इन मार्च 1985 से पुलिस आर्मी में इन्होंने काम किया था। हिज नोटेबल मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स इंक्लूड कमांडिंग द डिवीजन इन क्वेटा, सर्विंग एज अ वाइस चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ इन GHQ एंड एक्टिंग एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज रिसर्च एंड एनालिसिस ISSRA में रिटायर हुए। 2019 में आप रिटायर हुए। तो हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरेज सालिक हमारे साथ होंगे। आजकल दो तीन चीजें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ऑफकोर्स बलूचिस्तान भी जल रहा है। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, आज ही की एक न्यूज है जिसको मैंने आज के जाके आपके साथ कवर भी करना है। तो उस न्यूज के मुताबिक ज्यारत के हमले को हमने कवर करना है, जो क्वेटा का जिक्र है कि किस तरह से वो लोग जो ऑफिसर्स बेचारे सिपाही जो है छुट्टी के ऊपर आए हुए थे उनको कॉल ऑन ड्यूटी पे बुला लिया गया और फिर किस तरह से उनकी लाशों को भी मसख किया गया बलूचिस्तान। अगर हम कश्मीर की तरफ आ जाते हैं तो कश्मीर में भी आपको पता ही है कि बहुत से लोग असला लेकर के चले फिर रहे हैं, मगर अभी की एक न्यूज है कि शायद गवर्नमेंट और उनके दरमियान फिर कोई एक फैसला होने जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाने के बारे में, अबूरी सूबा बनाने के बारे में बातचीत हो रही है, उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। मगर अगर मैं कनाडा के हवाले से बात करूं साहब, दुनिया बहुत ही खतरनाक और खौफनाक होती चली जाए। ऑफकोर्स डरने की भी बात नहीं है। ये परसों 11 तारीख को एक जो जहाज का वाकया हुआ है कि जहाज उड़ रहा था, उड़ते हुए जहाज में इंजन का कोई हिस्सा टूटा, खिड़की के ऊपर लगा, किस तरह से खिड़की स्मैश हुई और खिड़की में से एक मुसाफिर, जाहिर है इतना प्रेशर होता है इंटरनल प्रेशर के नीचे एक्सटर्नल प्रेशर कि वो बॉडी एक आदमी बाहर निकला, उसकी औरत फौरी तौर पर शी वॉज प्रेजेंट माइंडेड, उसने उसकी टांगों से उसको पकड़ लिया, फिर दो तीन और मुसाफिरों ने इस बंदे को, तो पैथ इज इन अ ट्रामा, तीन दफा ये बंदा बेहोश हुआ, काफी जख्मी भी है। इसके बारे में यानी आप हवा में सफर कर रहे हैं, ना जमीन आपकी ना आसमान आपका, वहां पर भी आप मतलब सेफ नहीं है। जेडी वैंस ने एक बयान दिया है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कहते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सबोताज करने में किस तरह से, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, वी आर टेकिंग दिस न्यूज फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया। 47 मिनट का इंटरव्यू है जो रोगन के साथ जेडी वैंस का, और उन्होंने कहा है मोस्ट पीपल थिंक दैट एप्स्टन वॉज मोसाद, यस मोसाद और CIA और सम अदर डीप स्टेट वॉट एवर अमेरिका और इसराइल और एन अदर कंट्री। जेडी वैंस का ये इंटरव्यू है और उन्होंने ये कहा है कि इसको सबोताज करने में इसराइल ने जिस तरह रोल प्ले किया। उन्होंने एक और बात कही कि ईरान जो है, ईरान ने भी जेडी वैंस को खबरदार किया था कि स्टीव वेटकॉफ जो एम्बेसडर हैं इन इसराइल, नॉट एम्बेसडर यानी इसराइल का मामला और मिडल ईस्ट का मामला उनके सुपुर्द, और जेडी कुशनर जो हैं, ईरान ने कहा था कि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की आड़ में दे आर टेकिंग देयर पर्सनल बेनिफिट। ऑफकोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौज को, जमीनी फौज को ईरान की तरफ भेजने के बारे में भी जिक्र किया, मगर अमेरिका को पता है कि इसको सबोताज करने में कौन था। इन तमाम चीजों के बारे में आज के प्रोग्राम में कवर करेंगे। आपको पता है 18-19 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि वेलिंगटन में होने जा रहा है, और इसमें 18 तारीख को अली हैदर परफॉर्म कर रहे हैं। अली हैदर परफॉर्म अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे जनाब मेजर जनरल जे सालिक के बाद अली हैदर भी हमारे साथ होंगे, और ही इज हियर इन टाउन टू नाइट, ही हैज हिज प्रैक्टिस, तो वो भी हमारे साथ होंगे, अली हैदर भी हमारे साथ होंगे। मगर इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट शख्सियत मेरे साथ है, दैट इज जनाब राजा पाशा। अभी आप ऑन्टेरियो में ही देख लें जो आग लगी हुई है, और
آج پروونس نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مدد مانگ لی ہے, کیونکہ اس یہ آگ ایک تو ایویکویشن کا معاملہ ہے, آج بلکہ دو تین ویڈیوز بھی ہیں, ایک جو گڈس ٹرین ہے وہ جلتے ہوئے جنگل میں سے جیسے گزر رہی ہے, جانوں کو جو خطرہ ہے اس کے حوالے سے, اور پھر جب یہ دھواں اور پولوشن پوری طرف پھیلتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بیماری بڑھے گی, ان تمام چیزوں کو کور کرتے ہوئے نکلنا ہے. دیکھیے صاحب, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں بعض اوقات انشورنسز میں کور نہیں ہوتے, میں ذاتی طور پہ بھی محسوس کرتی ہوں, میں بلکہ آئی واز ویری کنسرن کہ بعض اوقات ہمارا اپارٹمنٹ ہوتا ہے, ہم اپارٹمنٹ کی انشورنس نہیں لیتے کہ بازار بلڈنگ کے ساتھ کورڈ ہوتی ہے. دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ, چاہے گھر کی انشورنس ہے چاہے اپارٹمنٹ کی انشورنس ہے. اینڈ آئی پرسنلی آج میں کنفیس کرتی ہوں, مجھے خود نہیں پتا کہ میرے گھر کی انشورنس میں اف نیچرل ڈیزاسٹرز آر کورڈ اور ناٹ. آئی وش اینڈ آئی ول ڈیفینیٹلی اسپینڈ ٹائم اینڈ آئی انوالو سمبڈی یگ فرام مائی اون ہوم ایز ویل ٹو ریڈ دا اسکرپٹ, سو وی مسٹ نو وٹ از دی فائن پرنٹ. بٹ وی آر لکی, 770 پہ ہم لکی ہیں کہ وی ڈو ہیو سرٹن اسپیشلائز پیپل ہو کین ٹاک اباؤٹ دس, جس میں گاڑی کی انشورنس ہے, گھر کی انشورنس ہے. راجا بادشاہ از آل اسٹیٹ کا جو ایجیکس پیپرنگ کا آفس ہے اس کے انچارج ہیں. اینڈ دا اندر بلیسنگ از آئی ایم پاسنگ ہز سیل فون نمبر, آپ ان کو ٹیکسٹ کر لیجیے گا, ہی از اویلیبل. اٹس سو نائس اینڈ کائنڈ آف راجا بادشاہ کی ان تمام نیوز کو آپ کو کور کرنے میں, یہی اسپانسر, سارے کے سارے اسپانسر اس میں ہیلپ کرتے ہیں. اینڈ الانگ وتھ دیٹ دے گیو اس امپورٹنٹ انفارمیشن. دیر واز اے ٹائم کتنی آندھیاں نہیں ہوتی تھی, طوفانی بارشیں نہیں ہوتی تھی, سیلاب نہیں ہوتے تھے, آگیں اتنی نہیں لگتی تھی. آپ دیکھیے لاس اینجلس میں لوگوں نے کتنا پیسہ لوز کیا بیکاز انشورنس کمپنی نے ان کو گھروں کی انشورنس ہی نہیں دی تھی. تو ہیو ٹو ہیو انشورنس, مسٹ ہیو ٹو ہیو انشورنس. راجا بادشاہ از ہیئر وتھ می, راجا بادشاہ ود آل اسٹیٹ ایج ایکس پکرنگ کے, آپ آنٹیریو میں کہیں سے بھی ان کو کال کر سکتے ہیں. راجا بادشاہ السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟
وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے.
اٹ از اے بلیسنگ راجا بادشاہ دیٹ وی کین گیٹ اپ یو آلویز 24 گھنٹے اور مہینے کے 31 دن, 30 دن اور سال کے 365 دن یو ڈیل دس انشورنس میٹرز فار ہوم اینڈ کار, اینڈ وی کین گیٹ ایک سنیپ شاٹ ہمیں مل سکتی ہے کہ واٹ از کورڈ. یہ نیچرل ڈیزاسٹرز اس وقت بھی اونٹیریو آگ کی زد میں جو ہے, اور اس کا دھواں ہر طرح جس طرح متاثر کر رہا ہے, پچھلے دنوں میں آندھیاں اتنی تیز چلی تھیں کہ لوگوں کے گھروں کی چھتوں کے شنگل جڑ گئے تھے. وڈ یو مائنڈ ٹو کور سم تھنگ, وائی اٹ از سو امپورٹنٹ؟ اور بہت سے لوگ جن کے گھر پیڈ ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ کوتا ہی کر لیتے ہیں, گھر پیڈ ہے جب تک تو بینک کے ساتھ ہے, تو بینک تو آپ کی گردن کے اوپر انگوٹھا رکھ کے بھی کہے گا کہ یو ہیو ٹو ہیو انشورنس, بیکاز ان کا جو بیلنس پیمنٹ ہے اس کے لیے دے نیڈ یو ٹو ہیو انشورنس سو دیٹ بینک کا لاس نہ ہو. مگر دیر آر ہومز وچ آر پیڈ. وٹ وڈ یو سی اباؤٹ دا نیچرل ڈیزاسٹرز اینڈ ہاؤ پیپل کین انڈرسٹینڈ دیئر پالیسیز؟
جی, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے آج. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے بات کی میرے سے. دیکھیں, جو ہوم انشورنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہے چیز, لیکن انڈرسٹینڈ کرنے کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھے کہ اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں, جو اس کے پارٹس ہیں, وہ کون کون سے ہیں. اس کے اندر ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ کی ریکنسٹرکشن کاسٹ ہوتی ہے انشورنس کمپنی جس کی بیس کے اوپر آپ کو پرائز کرتی ہے. ریکنسٹرکشن کاسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مارکیٹ پرائز, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر اگر ایک انشورنس کمپنی بنائے گی تو اس کو کتنا کاسٹ کرے گا, ڈپینڈنگ آن دی پارٹس اینڈ لیبر اینڈ آل, جو بھی اس کا مٹیریل وغیرہ ملا کے. پھر اس کے بعد فلڈ ہوتا ہے, انٹرنل ایکسٹرنل واٹر لیکنگ ہو جاتی ہیں, یہ بھی کور کرتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی فائر ہو جاتی ہے, وہ بھی کور ہوتی ہے. جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں نا, اس میں موسٹلی ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, کہ اگر تو ایک گھر افیکٹ ہوا ہے نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے تو اس میں انشورنس ڈیفرنٹلی ایکٹ کرتی ہے. یعنی اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس وہ اسپیسیفک کوریج تھی کہ نہیں تھی. اگر اس نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ایک 6, 8, 10, 12 گھر ان لائن ہو, ان ٹاؤن ہو, ان کوسٹل کور کے ایریا کے اندر وہ امپیکٹ کیے گئے ہیں, تو آف کورس اس میں جو کوشچنز ہیں وہ کم ریز ہوتے ہیں, اور وہ پھر ساروں کو ہی انشورنس کور کرتی ہے. لیکن جیسے ارتھ کویک ہو گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر, وہ آپ کو اسپیسیفکلی ڈلوانی پڑتی ہیں ایز این انڈورسمنٹ, और वो इंडोर्समेंट आपको कॉस्ट भी करती है और वो एक मामूली कॉस्ट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि $2-4 के अंदर आपने वो डलवा ली। इन माई अंडरस्टैंडिंग कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग ऑल स्टेट इंश्योरेंस जो घर होते हैं स्पेशली जो होम ओनर्स जो डिटैच या अटैच या ये जो टाउन होम होते हैं स्ट्रक्चर के साथ इनको अंडर इंश्योर नहीं करती। वो मेक श्योर करते हैं कि हम इनको प्रॉपरली इंश्योर करें क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे अगर कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ही आपने आना है और दे वांट टू मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर कवरेज हो। और लाइक आई सेड इन माय अंडरस्टैंडिंग जो होम इंश्योरेंस है वो आपको प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से कवर करती है अनलेस कि ये अर्थक्वेक एक स्पेसिफिक जो मैं बार बार नाम दे रहा हूँ अर्थक्वेक ये आप इंडोर्समेंट डलवा सकते हो बाकी सारा कुछ ही कवर होता है। लेकिन उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं कि कवरेज की लिमिट क्या है तो वो लिमिटेशन आपको डिस्कस करनी होती है अपने इंश्योरेंस कंपनी से कि हमारा घर की जो लिमिट है कवरेज की वो ऐसा तो नहीं है कि वो अंडर इंश्योर हो फॉर सम रीजन। हमारे पास एक प्रॉपर लिमिट है हर चीज की चाहे वो हमारे पर्सनल कॉन्टेंट्स हो चाहे वो स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग हो चाहे वो डिटैच स्ट्रक्चर हो जो कि आपके ओनरशिप के अंदर ही आता है। तो स्पेसिफिकली इसका क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल है डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है तो उसके लिए अपने अपने प्रोवाइडर्स से या मुझे कॉल कर लें आप मुझे बताइए शो करी के क्या कवरेजेस हैं तो आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू इन अ मोर डिटेल वे या आप खुद से अपनी पॉलिसी की वर्डिंग्स पढ़ लें। इंश्योरेंस कंपनीज आपको सेंड करती हैं उन वर्डिंग्स के अंदर हर चीज की डेफिनेशन लिखी होती है कि क्या चीज कवर्ड है इन विच सिचुएशन व्हाट इज कवर्ड।
राजाभाषी का नंबर 6472903773 आप ये अपनी जुबान में बात करते हैं आप कहीं से भी यू डोंट नीड टू गो टू हिज ऑफिस यू कैन कॉल हिम। राजाभाषी का नंबर 6472903773 एंड ऑनेस्ट टू गॉड अल्लाह ना करे कि मुझे और आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़े बट यू नो व्हाट गॉड फॉरबिड वी आर ऑल हेल्पलेस। अभी आज ही की न्यूज आप लोगों ने भी देखी होगी कि मिसिसागा में 401 के ऊपर जो एक्सीडेंट हुए हैं उसके हवाले से इट्स वेरी सैड कि यहां पर एक ड्राइवर की डेथ हुई यानी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है औरत की डेथ हो जाती है। मैं क्विकली जब तक राजा बादशाह मेरे साथ ही है उसी दौरान ही मैं इसको कवर करती हूं। ये किंगस्टन हाईवे 401 पर गाड़ी से बाहर निकल वाली खातून दूसरी गाड़ी की टक्कर से जहां भाग यानी पहले किसी ने टक्कर मारी औरत गाड़ी में हाईवे पे गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा बिल्कुल मत निकलिएगा। ये किंगस्टन ऑन्टेरियो में ओपीपी के मुताबिक एक अफसोसनाक हादसे में 56 साल खातून अपनी गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दूसरी गाड़ी की जद में आ गई और ये वाकया बुध की शाम कल शाम को 7 बजे के करीब ये वाकया हुआ है। एक और वाकया जो है मिसिसागा हाईवे 401 पे हुआ है खौफनाक हादसा है 2 लोगों की डेथ हुई है और ऑन्टेरियो पुलिस के मुताबिक आज सुबह की बात है 401 पर पेश आने वाले शदीद ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद की डेथ हुई है 3 जख्मी हुए हैं। यह हादसा ये भी कल ही हुआ है बुध को 9 बजे से कुछ पहले हाईवे 401 की मशरक की जाने वाली जो एक्सप्रेस लेन्स में से डिक्सी रोड के करीब यह हादसा पेश आया 53 साल खातून 80 साल मर्द दोनों कैम्ब्रिज ऑन्टेरियो के रिहायशी थे देखिए रहते कैम्ब्रिज में थे डेथ जो है वो डिक्सी एंड 401 पे हुई है। तो वी हैव टू हैव कार इंश्योरेंस। राजा जी प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिएगा।
जी मैं नंबर देता हूँ उससे पहले ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ मुझे भी रिमाइंड आपने करवा दिया ये सारे इंसिडेंट बता के कि जो भी रिसेंटली जुलाई फर्स्ट से जो अपडेट आई थी जो हम बार बार बता रहे थे कि ऑप्शनल एडिशनल बेनिफिट्स आपके पास एक ऑप्शन आ गया है चूज एंड पिक करने का एंड यू कैन रिमूव देम उन्हीं के अंदर ये डेथ एंड फ्यूनरल बेनिफिट्स भी वन ऑफ दोज है। सो ये भी अपने माइंड में रखिए नहीं ये पहले तो मस्ट होता था लेकिन अब एक ऑप्शन आ गया कि आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं।
आई डोंट थिंक सो कि वी मस्ट वी शुड रिमूव कितने का
वही आ रहा 5-6 भी नहीं है इस वेरी जो डेथ बेनिफिट्स या फ्यूनरल बेनिफिट्स हैं ये इंश्योरेंस कंपनी में इनकी मुझे मैं ऑफ स्टेट की सिनेरियो में बात कर रहा हूँ कोई इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं नजर आया $2-3 का डिफरेंस था तो दैट इज नॉट वर्थ। जो ये चीज नजर आई मुझे जो इम्पैक्ट डालती है वो इनकम रिप्लेसमेंट वाला जो पोर्शन है वो $12-13 मंथली डिफरेंस डाल सकता है प्राइस के अंदर इन माई
अंडरस्टैंडिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट।
जी जी वो उन लोगों के लिए जैसे भी पिछले दिनों मुझे किसी की कॉल आई तो मुझे कह रहे थे कि कुछ और रिड्यूस करें पहले मैंने थोड़े कन्विंस करने की कोशिश की फिर दर मैंने उन्हें उनके ऑप्शन दिए कि ये हैं ऑप्शन। सो देयर आर सिचुएशन जब लोगों को इनकम रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती फॉर एग्जाम्पल आप रिटायर हैं रिटायरीज हैं आप पेंशन पर हैं यू मे नॉट गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस स्पेसिफिक कवरेज, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब पे हैं और आपको जॉब लूज करने की सूरत में इनकम लॉस हो सकती है, तो इनकम रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो ये डेथ बेनिफिट्स एंड फ्यूनरल बेनिफिट्स मुझे याद आ गया कि रिमाइंड करा दूं, बिकॉज ऑफ दीज एक्सीडेंट्स जो आपने मेंशन किए हैं। ऑटो इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस के लिए फोन कर सकते हैं मुझे 6472903773 के ऊपर। ओंटारियो में कहीं से भी $2000 की सेविंग भी है, जिसमें आप मल्टी कार एंड कार प्लस होम डिस्काउंट को कम्बाइन करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म से मैं रिसेंटली आपको न्यूज दी थी कि आउट स्टेट अब जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं, जो न्यू ड्राइवर्स हैं फॉर कनाडा, बट उनके पास बैक होम का एक्सपीरियंस है, वो लाइसेंस रिकॉग्नाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से, तो उनके लिए हमारे पास गाइडलाइंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से एक अच्छी प्राइस देने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि समहाउ ऑन अ सर्टन लेवल डिपेंडिंग ऑन दी एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड द गाइडलाइंस, हम आपको बैक होम का जो एक्सपीरियंस है वो भी कंसिडर कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी रब्ता करिए। क्योंकि मुझे पता है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, प्राइसें बहुत हाई आ रही हैं, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए, यंग ड्राइवर्स के लिए चीजें ऐसी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते मार्केट के अंदर। प्राइस वाइज मैं बात कर रहा हूँ, तो आप डिस्कस करिए, बताइए आपकी सिचुएशन क्या है, आपका बजट क्या है, एक कस्टमाइज कोड आपको जिसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर पसंद आए तो उसे कंटिन्यू करें। और अगेन मेरा फोन नंबर 6472903773 है।
बहुत शुक्रिया राजा बादशाह, आपकी अपनी जुबान में बात करते हैं, आप उनको कॉल कर लीजिए 6472903773। राजा बादशाह बहुत शुक्रिया। हमारे अगले प्रोग्राम में हम आपको लेकर के चलेंगे पाकिस्तान। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी सीनियर पर्सन, मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद समरीज सालिक इनका नाम है। रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स हैं, प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप इनको सुनते भी हैं। 1985 से लेकर 2019 तक आप आर्मी में रहे एंड ही इज मेजर आर्मी में। आपको बताइए कि हम जिक्र करते हैं अपने चीफ का जिक्र करते हैं, अराउंड 28-29 अदर थ्री स्टार जर्नल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जर्नल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ऑफकोर्स दे नो वेरी मेनी थिंग्स, वी आर वेरी मच कंसर्न्ड एट द मोमेंट व्हाट इज हैपनिंग इन, क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, क्या प्रॉब्लम चल रही है कश्मीर में, इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है। और सोने पे सुहागा जनाब जो जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो जरा खौफनाक है, और खासतौर पे ये वो लोग जो मजहबी जमातों के साथ हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट के दे नो व्हाट देयर पावर इज, और बहुत से लोग जो तालीम से आरी होते हैं वो बाज़ुकात मजहब के नाम के ऊपर जिस हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। दैट इज, आपको मौलाना फजल रहमान का एक वाक्या याद होगा कि जब किसी ने उनसे सवाल किया कि आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, करोड़ करोड़ की गाड़ियों में चले फिरते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा एक एक फॉलोअर अगर मुझे 5-5 रुपए भी दे तो मैं ऐसी कई गाड़ियां खरीद सकता हूं। अगेन आई एम नॉट इन टू समबडीज पर्सनल्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिसेंट बयान है इसमें आर्मी ने भी जो बयान दिया गलत, कुरान पाक की सूरत जो कुल या अय्युहल काफिरून है उसमें अल्लाह कहता है तुम दूसरे को ना छेड़ो वो तुम्हें नहीं छेड़ेगा, तुम उसके मजहब को बुरा ना करो तुम वो तुम्हें नहीं कहेगा। जाहिर है पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार है, और मैं अगर आरफा मुजफ्फर रेडियो स्टेशन पर अपनी काम करती हूं आई एम पेड फॉर दिस, आई एम डेफिनेटली पेड फॉर दिस। मगर हमारे जो ISPR है उनको भी वो नहीं कहना चाहिए था जिसपे अब। मगर मौलाना फजल रहमान का अगर पास्ट देखा जाए तो उन्होंने कभी भी कोई बात अपने मकसद के बगैर नहीं कही थी। आप देखिए एक जमाने में उन्होंने फतवा दिया था कि औरत की हुक्मरानी ही हराम है, और फिर उसी औरत से उन्होंने कश्मीर में पोजीशन भी ली थी। आई अंडरस्टैंड इवन इन कैनेडा देर वेरी मेनी वेरी रिलीजियस पीपल, दे डोंट लाइक दिस थिंग, बट दीज आर द फैक्ट्स। मेरा ख्याल है कि वी आर कनेक्टेड टू पाकिस्तान। अमित शमसी इज ऑल्सो ऑन द वे, और आपको पता ही 18-19 तारीख को अली हैदर की परफॉर्मेंस है 18th को, दैट इज इन बर्लिंगटन। अमित शमसी हैज बीन डूइंग दीज शोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ in Burlington this is their first halal food festival. Ali Haider is also heading towards a studio and hum unki kisi lamhe bhi aap se baat karwayenge, but
at the moment I will take you to Pakistan. Retired Major General Janab hamare saath hain aur unse main is waqt baat karane ke liye aapko leke jaun ji. Major General Retired Mohammad Samri Sadiq. Sir, assalamu alaikum and how are you today?
Very much. Main aapke program dekhta rehta hu, aapke podcast aur I really like the way you conduct these programs and it's an honor for me ke main aaj aapke program mein shamil hoon for the first time.
Sir, main bahut ehsanmand hoon aapki and it's very critical condition at the moment. Number 1 Balochistan ko jab main dekhti hoon and I was reading the news today, it was very sad and bada gham hua ke ziyarat pe jo hamla kiya police officer ek ladke ki shaadi thi unke chehron ko bhi masak kiya aur hamari afwaj wahan par bhi apna role play kar rahi hai, police department wale apna role play kar rahe hain, aam aadmi apni zindagiyan dete chale ja rahe hain. Agar main Kashmir ki taraf aati hu to aap hamare ek bahut acche bhai hain jo Monday ko hamare saath aaya karte hain, aap kurdon ki baat karte hain, unko state de de, unko state de de, India state de de, hum apne Kashmir ke beech mein mamla nahi hal kar pa rahe. That is also very sad, but today ek thodi dil ko tasalli dene ki khabar bhi aayi hai ki shayad government ki aur Kashmir mein jo log hain unke darmiyan mabain baat cheet hui hai. Today is around 16th 17th ki tareekh ho gayi aur 26 tareekh ko Kashmir ke election bhi hain. Sabse pehle to mujhe Kashmir ki surat-e-haal ke bare mein bataye ki kya wajah hai. Main manti hu ki biruni mamalik jo hain unki intervention hai. आज जेडी वैंस ने बयान दे दिया है कि अमेरिका इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी ताकत, गो कि वो ईरान इसराइल को सपोर्ट करते हुए ईरान के साथ पंगा लेके बैठे हुए हैं, मगर जेडी वैंस ने ये लफ्ज कहा है. आई हैव द रिपोर्ट हियर इन फ्रंट ऑफ मी जिसको अमेरिका से कवर किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि absolutely जो memorandum of understanding है उसको मुसाद is they are spending, Israel is spending too much money in America to for the lobbying. तो क्या कहते हैं आपके पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनको चाहिए था कि ये जो जितने terrorist organization and those who are trying to infiltrate in Pakistan system, why they couldn't stop them on time?
मैम, थैंक यू वेरी मच. देखिए, बलूचिस्तान का अगर मैं जिक्र करूं तो खैर मैं उसमें बाद में आऊंगा क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन कश्मीर के बारे में है. तो बलूचिस्तान में मैंने एक सीनियर पोजीशन पे एक डिवीजन, इन्फेंट्री डिवीजन कमांड किया 2012 से 14 तक. उस पर खैर हम बाद में बात करेंगे. देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है, वी ऑल लव पाकिस्तान, दिस इज आवर मदर लैंड. और लेकिन यह है कि जो हालात जिसमें पाकिस्तान ने अपना अपनी नेशनल लाइफ गुजारी है वो आप मेरे से एग्री करेंगी कि वो बहुत चैलेंजिंग रही है. एक तो ये है कि मैं ये कहता हूं कि हमारा जो नेबरहुड है तो वो ट्रबल सब है. एक तरफ इंडिया है जो हर लिहाज से कोशिश करता है पाकिस्तान को डैमेज करने की, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जो मॉडर्न हिस्ट्री में कम अज कम 200 साल से डिसफंक्शनल है. वहां कभी किसी की हकूमत, कभी रिलेटिव पीस आती है, बट एक परमानेंट फंक्शनिंग जो कंट्री होता है उस हालत में नहीं रहा. तीसरी तरफ हमारे ईरान जो कि सैंक्शन रहा है पिछले ऑलमोस्ट 4 डिकेड से और अब अंडर अटैक है बाय सुपर पावर. तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं ये समझता हूं कि, और इसके अलावा आप ये भी मेरे से एग्री करेंगी कि दो दफा 20वीं सदी में, एक था जब सोवियत यूनियन आ गया अफगानिस्तान में, हमारी चॉइस से नहीं आया था, लेकिन ये वो हालात थे जो हमारे सर पे थोपे गए और पाकिस्तान ने उस वक्त एज ए फ्रंट लाइन स्टेट का रोल प्ले किया. यूएस ने कोर्ट और जीती, अपने हाथ साफ किए और वापस चले गए. सो सेकेंड टाइम अगेन वॉर ऑन टेरर के केस में पाकिस्तान को अगेन एक रोल प्ले करना था, किया. इन दोनों जंगों में हमने कुछ फायदे भी उठाए और कुछ नुकसान भी उठाए. और मेरे नजदीक, मैं जब डिस्पैशनेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता हूं तो मेरा ख्याल है कि हमारे नुकसान ज्यादा हुए हैं, फायदे कम हुए हैं. और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली एक बड़ी कैंडिड कन्फेशन की कि 20वीं सदी में पाकिस्तान ने डर्टी रोल प्ले किया वेस्ट के लिए. सो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है कि एवरी नाउ एंड देन मैं ये कहता हूं कि दो हाथी डिसाइड करते हैं लड़ने के लिए और पाकिस्तान उनके मेडल में आ जाता है। ये मैं प्रीएम्बल इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको मतलब ऑल्दो आपको सारी चीजें आपके नॉलेज में आएंगे, लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं अपने व्यूज के लिए कि इन हालात में पाकिस्तान ने अपनी नेशनल लाइफ गुजारी है। सो जब इस तरह की कंडीशंस होंगी तो हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, हमारे इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, और इंटरनल सिचुएशन हमारी एग्रवेट हो रही है। और मैं ये भी मानना चाहूंगा कि पाकिस्तान, अगर मैं कहूं कि 70 साल से वेल मैनेज्ड रहा है या वेल गवर्न्ड रहा है या एक बहुत अच्छे तरीके से हमने अपनी तमाम सिस्टम्स को चलाया है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। पाकिस्तान में इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनका इनअप्रोप्रिएट तरीके से उसका इस्तेमाल, ये सारी चीजें हमारे तमाम हमारे नॉलेज में हैं। सो ये जो प्रोलॉन्ग्ड एक फीलिंग रही है डेप्रिवेशन की, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की, पॉवर्टी की, एलिनेशन की, ये सारा एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो अभी हम फेस कर रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर जलगार है एज फार एज बलूचिस्तान इज कंसर्न एंड इवन टू सम एक्सटेंट कश्मीर, जो कि मेरे नजदीक एक ट्रायका क्रिएट हो चुका है जो कंप्राइज करता है इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान। ये अनफॉर्चुनेटली ये तीनों ममालिक अभी मिलकर ऐसी एक्टिविटीज कर रही है जो कि पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन को बहुत बुरे तरीके से एक्सेसिबेट कर रही है।
बहुत शुक्रिया। इसराइल, अफगानिस्तान एंड इंडिया, और ऑफ कोर्स क्या वजह है कि मुस्लिम, अब आप किसी बात से, मैं कश्मीर से निकल के, क्या बात है कि बाकी मुसलमान ममालिक जो हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर नॉट रियलाइजिंग इट कि कितना अनस्टेबल किया इसराइल ने, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात थे इंडिया के, इन्होंने वहां पे बड़ा इंडिया ने स्पेंड भी किया, ईरान में चाबहार बंदरगाह पे बड़ा पैसा खर्च किया, मगर फिर मोसाद के बंदों को मिडिल ईस्ट में भी नेवी में पकड़ा गया, ईरान में भी पकड़ा गया, बलूचिस्तान में इनकी एक्टिविटी को भी पकड़ा गया, बट स्टिल व्हाट इज द प्रॉब्लम कि दीज Arab countries, they don't recognize how Israel is damaging the whole system. And abhi recently Afghanistan ke ek jo ala afsar hain wo India gaye hue the, and he said I feel like home. Kya ho gaya hai musalmanon mein, kya hum wahi purane zamane ke beech mein jaake khade ho gaye hain jabki apne hi log मरने मारने पे तैयार हो जाते, कलमा गो मरने वाला भी कलमा गो, मरवाने वाला भी कलमा गो, मारने वाला भी कलमा गो।
मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टॉप पे कंटेस्टेशन है, जो लड़ाई हो रही है, जिसको हम समझते हैं द टर्म ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वो है बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। एक तरफ क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म इकट्ठे हुए हुए हैं और दूसरी तरफ जो राइवल उनका जो सिविलाइजेशन है वो इस्लाम है। और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मई 25 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो आपको याद होगा कि पहलगाम इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में हिंदुइज्म, जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी तीनों इकट्ठे हो गए थे। नाउ इफ आई टेक यू बैक, आई थिंक इन 73 और 74 पाकिस्तान में एक समिट हुई थी जो कि
इस्लामिक समिट,
अच्छा जी, एक डिस्प्ले की थी यूनिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और अगर आप रिकॉल करें कि उसमें जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके साथ क्या हुआ, सो मेरे नजदीक वो कुछ टाइम ऐसा था, उस वक्त ये भी था कि इवन मुस्लिम जो हमारे अरब वर्ल्ड है वो ऑयल को एज अ वेपन यूज करते थे, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से उन तमाम पावरफुल लीडर्स को एलिमिनेट किया गया, जिस तरीके से पेट्रो डॉलर का सिस्टम बनाया गया, कार्टेल बनाए गए, अरब वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनको अपनी सेंक्टिटी, अपनी गवर्नमेंट की सेंक्टिटी वो ज्यादा सैक्रोसैंक्ट है देन व्हाट मे बी नेसेसरी इस्लाम के लिए या उनके लोगों के लिए। ये तो दिस अ गिवन फैक्ट, वेरी वेल नोन टू यू। सो ये वो टाइम था जब हेनरी कसिंजर सऊदी अरेबिया में आए, उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी गवर्नमेंट की एश्योरेंस देता हूं, लेकिन आप ये मेरे से कमिट करें कि आप पेट्रोल डॉलर के अलावा किसी पैसे में आप जो है वो ऑयल नहीं बेचेंगे। एंड वी नो कि ये एग्रीमेंट्स हुए और ये एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। سو مسلم ورلڈ میں جو ڈویژن ہے وہ انجیکٹ کی گئی. بٹ کے جو رولرز ہیں یو ایگری وتھ می کہ ان میں وہ سیلف لیسنس وہ کمٹمنٹ وہ ڈیڈیکیشن نہیں ہے.
نہیں سر, دے آر کمیٹڈ فار دیئر اون پاور. حالانکہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کی بات کا بھی ذکر کرتے ہیں تو جو امیر معاویہ تک یعنی جو خلفائے راشدین تھے وہ پیچھے امیر معاویہ نے جو ٹائم گزارا, پھر وہ خلفائے راشدین نے ان کا شمار نہیں ہوا تھا. پھر انہوں نے اپنے 10 سال کے عرصے کے بعد جب یزید کو انہوں نے اپنی ولیعہد بنا لیا تھا تو وہاں پہ. مگر اسلام میں کہیں بھی باپ سے بچے کی طرف حکومت منتقل ہونا الاؤڈ نہیں ہے. میں آپ نے بھی بات کی کہ دس از اے وار بٹوین جودزم کرسچنز اینڈ اسلام کے درمیان ہے, بٹ انفارچونیٹلی وین آئی لک ایٹ دس سینیریوز مجھے لگتا ہے کہ یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی جس میں ایک ہاتھی بڑا پرسکون ہے, ایک ہاتھی تڑپ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے پاور نکل رہی ہے, اس میں پس رہا ہے زمین جو پس رہی ہے, دیٹ از آئی ایم سو سوری فار مائی کاف, تو زمین جو پس رہی ہے وہ گلف ایریا, اور جس میں مسلمان خود رول پلے کر رہے ہیں بیکاز دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیئر اپنی جو بادشاہت منارکزم ہے اس کو وہ سیو کر رہے ہیں, اینڈ دے آر جسٹ ورکنگ ایز سیلفش اینڈ اسٹوپڈ ٹو سیو دیئر پاورز, ویئر ایز بیسیکلی یہ وار از بٹوین امیرکا اینڈ چائنا کے درمیان.
ایبسلوٹلی, دیکھیے میں کیوں کہتا ہوں کہ ٹاپ پہ جو کلیش آف سیولائزیشن ہے اس کے بارے میں دو چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ویسٹ کی اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ سنس کولمبس رہی ہے کلیش آف سیولائزیشن, جو اٹینٹن کی تھیوری ہے, ڈیوائڈڈ رول اینڈ ایسٹک لیونگ, اور آپ دیکھیں کہ اس کی مینیفیسٹیشن آج بھی ہو رہی ہے. غازہ میں کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ایتھنک کلینزنگ ہوئی ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول میں ان کا ٹپیکل سٹائل ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑاؤ اور اپنے مقاصد حاصل کرو. سیکنڈ از جو کنورس, جو دوسری جو تھیوری جو چائنا بھی پروپیگیٹ کر رہا ہے وہ ہے انٹیگریشن آف سیولائزیشن, ون ون کوآپریشن اینڈ میوچل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ اسلام اور کرسچینٹی کی رائبلری ہے, وہ اس وجہ سے کہ جب سوویت یونین کو امریکہ نے ڈیفیٹ کر دیا سو امریکہ کی جو ملٹری مائٹ اور ملٹری مشینری ہے اس کو ایک جسٹیفیکیشن چاہیے تھی اپنی ایگزسٹنس کے لیے, تو ملٹنٹ اسلام کریٹ کیا گیا اور ملٹنٹ 9/11 ہوا اور جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد سے ایک جنگ لڑی گئی ملٹنٹ اسلام کے خلاف. اب جو نئے چیلنجز امریکہ کے لیے برج ہو رہے ہیں, سو اگر میں آپ کو یاد لاؤں کہ جب امریکہ آیا ہے 9/11 کے بعد آپریشن کرنے افغانستان میں, سو پریزیڈنٹ بش نے دو ٹرمز یوز کی تھی. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہوگی, سو کروسیڈ واز نتھنگ بٹ وار بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. بیک لیش آیا, ہی ہیڈ ٹو بیک ٹریک. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ اس آپریشن کا نام انہوں نے رکھا تھا انفینٹ جسٹس, اس کے بھی مسلمانوں سے بیک لیش آیا کہ اللہ صرف انفینٹ جسٹس کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی انہوں نے بیک ٹریک کیا. سو جب وہ ریج میں تھے, غصے میں تھے, تو انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا کہ ایکچوئل ٹسل ہے کرسچینٹی اور اسلام کی. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے نزدیک میں کیوں ایرانین ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایران ایک واحد وہ ملک ہے جس نے پچھلے 40-50 سال سے سارے چیلنجز کو ود سٹینڈ کیا ہے, اور ابھی اس نے ایک سپر پاور سے ٹکر لی ہے, وہ سپر پاور کے جس کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک فون سے بہت ساری طاقتیں جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہیں.
میرا نہیں خیال اب ایسی صورتحال ہے, اب تو آئی تھنک سو دے ہیو لاسٹ دیئر کریڈیبلٹی.
جو ایرانینز
نو دا سپر پاور ہیز لاسٹ اٹس کریڈیبلٹی. آپ دیکھیے پورا کا پورا یورپ اٹھ کے کھڑا ہی نہیں ہوا, نو بڈی ایون لسن ٹو ہم.
جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے ایران کے خلاف, یہ اتنی ڈیفائننگ رہی ہے یو ایس کے اسٹیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے بڑا لاس جو میری اسسمنٹ پہ ہوا ہے کہ ان کی الائنس بریک اوے ہو گئی ہے, دا اسٹرانچیسٹ آف الائنس ور ناٹ ریڈی ٹو اسٹینڈ ود دا یو ایس. ناؤ کمنگ ٹو جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے چائنا اینڈ دا یو ایس, یہ इमर्जिंग हाथी हैं, दो हाथी हैं। और मेरा फियर ये है कि मैंने आई मे शेयर विद यू कि मैंने पीएडी की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ सीपैक पे ओके तो उसमें मैंने यही रिसर्च की कि सीपैक कैसे हमारी सिक्योरिटी को एक्सेसिबेट करेगा, सिक्योरिटी चैलेंजेस को, और कैसे ये एक और फ्रंट के ऊपर हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है। सो मैंने सीपैक की थ्रेट्स आइडेंटिफाई की। ये जो आपने आइडेंटिफाई किया चाइना और यूएस की राइवलरी, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि जो हम बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसमें इस डायमेंशन का भी अमल दखल है कि एक दफा फिर पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज में आ रहा है दो हाथियों की लड़ाई में।
सही, आपको याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक एपिसोड हुआ था, उसमें इसराइल ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया था इंडिया को। आई विश कि इस तरह के एपिसोड ना ही हों तो बहुत अच्छी बात है। मैं सर अमेरिका की तरफ आपको लेकर के बढ़ना चाहती हूं। ऑफकोर्स हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ भी निकल जाए, हालांकि मेरा कंसर्न इस वक्त पाकिस्तान है। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू टॉक अबाउट जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बातचीत की है उसके बारे में बात जरूर करना चाहती, बट आपने कहा, मैं आई अंडरस्टैंड कि मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं दे आर रनिंग आफ्टर देयर ओन बादशाहतों के बीच में अपनी पोजीशन को संभालने के लिए वो दाएं बाएं के सहारे ले रहे हैं, चाहे आप इसमें कतर की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, इन सारे बादशाहों, क्योंकि ये खुद और फिर आगे इनकी उलादों ने के पास वलीअहदी है। What is the reason कि J.D. Vance जो है कल उन्होंने जो बातचीत की है, उन्होंने J.D. Vance ने कहा है कि अमेरिका का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, जिसको में पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले किया, कतर ने बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि हमें अमेरिका को पता है कि इसराइल जो है वो इसको सबोताश करने की कोशिश कर रहा है। Even though they know के during this ये memorandum हो रहा था, उस जमाने में भी इसराइल ने लिबनान में अटैक करने शुरू कर दिए थे उसके बाद, but still they are not understanding this, they are still there to protect Israel।
देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसराइल एक इंटरनेशनल बुली था जो विच वॉज क्रिएटेड बाय द वेस्ट, और अब वो टाइम ऐसा आ गया कि उस बुली ने अपने क्रिएटर को चैलेंज करना शुरू कर दिया। आज मैं कहीं पे आई वॉज डिलीवरिंग अ टॉक स्टूडेंट्स को, तो मैंने उनसे वही बात की कि मुझे दुनिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसे ही नजर आती है जैसे गांव की पॉलिटिक्स होती है। एक चौधरी जो है वो बदमाश पालता है, फिर एक टाइम आता है कि वो बदमाश चौधरी को चैलेंज करना शुरू कर देता है, फिर वो चौधरी एक और बदमाश पालता है पहले बदमाश को सब्ड्यू करने के लिए।
सर यू मस्ट बी प्राउड ऑफ इट कि वेस्ट ने हमें कपड़े उतारने की तरगीब दी, मगर हमने वेस्ट को बड़ी कमाल की चीज दी कि दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग आर चौधरीज, वडेराज, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि चाहे वो भट्टे वाले हैं चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे डोंट थिंक दैट द पुअर हैज राइट टू लिव। और हमने यहां पर भी वो ब्राइबरी एंड करप्शन को वेस्ट की तरफ इंड्यूस कर दिया।
That's very unfortunate. हमें अच्छी क्वालिटीज और अच्छे एट्रीब्यूट्स एक्वायर करने चाहिए, और मैं इस पे आगे मजीद बात करूंगा कि कैसे हम चाइना से ये कुछ एक्वायर कर सकते हैं। पर जो आपने क्वेश्चन किया है कि इसराइल की क्रिएशन और फॉसिल फ्यूल्स की डिस्कवरी, ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज है। जब वेस्ट को पता चल गया थ्रू देयर टेक्नोलॉजी के यहां पे ये वेल्थ है अंडर द सरफेस, तो उन्होंने एक दे वांटेड टू हैव एक कंट्री क्रिएट किया जिसका टोटल मकसद था इंस्टेबिलिटी रखना मिडिल ईस्ट में। मैं यहां पे जॉर्ज फ्रीडमैन को कोट करना चाहूंगा, इज अ यूएस ऑथर, उन्होंने अपनी बुक नेक्स्ट 100 ईयर्स में ये लिखा है कि यूएस का ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि इंस्टेबिलिटी है। और उस इंस्टेबिलिटी का जो मोरा था, जो व्हीकल था, जो वो इंस्टेबिलिटी इंश्योर कर रहा था, वो इसराइल है। अब देखिए टाइम बदल चुके हैं, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो चुकी है, अल्टरनेट सोर्सेज आ चुकी हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मिडिल ईस्ट का जो ऑयल है वो बिल्कुल रेलेवेंस लूज कर चुका है, लेकिन जो आपको पता है कि वेनेजुएला का ऑयल भी अमेरिका के पास है, उसके पास शेल गैस भी है, उसके पास और भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आना शुरू हो गए हैं। सो ये जो इक्वेशन है वो काफी हद तक ऑल्टर हो चुकी है, लेकिन इस वक्त इसराइल के पास अभी भी मीन्स है, उसके पास अभी भी लेवरेजेस हैं जिससे वो मैं समझता हूं कि अमेरिकन लीडरशिप को ब्लैकमेल करता है। जेडी वैंस की आप बात कर रही हैं तो उसने तीन चार मेजर बातें की हैं आज। एक उसने कहा है कि हमें पता है कि इसराइल ने एज ए स्पॉयलर का काम किया है, ये नोन था, और अमेरिका अगर डिस्पैशनेटली एक्सेप्ट करना चाहे तो वो ये करना पड़ेगा उसे कि इस जंग में धकेला भी उसे इसराइल ने है। इसराइल ने फर्स्ट अटैक किया था, ओके, देन ये भी एंटिसिपेटेड था कि इसराइल करेगा स्पाइडर का तौर पे काम करेगा। नतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वार्न किया कि जो इरानियंस हैं दे आर प्लानिंग मेकिंग अ प्लान फॉर हिज असैसिनेशन। अब जस्ट इमेजिन कि अगर कोई और पार्टी ये काम कर जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे से ट्वीट किया कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो इतनी ज्यादा वो ये जो डिवास्टेटिंग स्ट्राइक्स होंगी कि पीपल विल नॉट बी एबल टू इमेजिन इट नाउ। सो जस्ट इमेजिन कि ये किस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है।
सही।
और पहले भी इसराइल ने इस तरह के काम किए हैं कि अपने ही हमारे मुसलमान मुल्कों पे अटैक करके ईरान के ऊपर लगाया। और अनदर जो जेडी वैंस ने बात की है वो ये की है कि एपस्टीन जो था उसके कॉन्टेक्ट थे इसराइल गवर्नमेंट के साथ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अमेरिका में। और उसने ये भी एडमिशन किया जेडी वैंस ने कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस इशू को सही हैंडल नहीं किया।
सही बिल्कुल साहब, ये आज हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, वी आर शोइंग दिस कोट ऑन कोट्स में द मोस्ट पीपल थिंक दैट एप्सटीन वाज मोसाद, यस मोसाद और CIA और सम अदर डीप स्टेट वेदर अमेरिका और इसराइल और अनदर कंट्री, ही क्लियरली हैड कनेक्शन टू द अपर लेवल ऑफ अमेरिकन इंटेलिजेंस, ही क्लियरली हैड कनेक्शन टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ इसराइली इंटेलिजेंस, ही सीम्ड टू बी कनेक्टेड टू द एलिमेंट्स ऑफ द इसराइली डीप स्टेट दैट वर लेफ्ट ऑफ सेंटर, इट वॉजंट लाइक ही वॉज सुपर कनेक्टेड टू द राइट सेंटर ऑफ इसराइली पॉलिटिक्स, इन अमेरिका ही हैड फ्रेंड्स अक्रॉस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम इन द वे ही हैड नेसेसरली हैड द सेम कॉन्टेक्ट। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ी, आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल सर, मुझे तो अफसोस है कि वी आर ऑल हेडिंग टूवर्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, और एक और चाइना इतने सुकून से चल रहा है, इतने सुकून से चल रहा है। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ईरान के ऊपर अगर सेंक्शंस थी, द मोस्ट ऑयल वॉज गोइंग फ्रॉम हियर टू चाइना, बट दे जस्ट वॉन्ट टू ब्लॉक चाइना। बट लेट मी टेल यू, चाइना की अभी रिसेंटली दो नई इन्वेंशन आई हैं जिसमें चाइना ने एक बार फिर से बीट किया है टू द वर्ल्ड। मैं आपको लेकर के आना चाहती हूं सर पाकिस्तान में, आपके टाइम का और आपका बे इंतहा शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जो बयानिया दाग दिया, यानी पाकिस्तान दुनिया इस वक्त जल रही है, इस वक्त इस खत्ते की भी जो सूरत हाल है, अगर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान एक अपनी तरफ से यू नो ट्राइंग गरीब आदमी ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू को ऑप इन दिस सिचुएशन, मगर उन्होंने जो बात कही, ISPR को भी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि हमने वर्दियां पहनी और हम मुल्क के लिए लड़ते हैं। उन्होंने जवाब जो बड़ा अजीबो गरीब जवाब दिया है, मैं अगर आपकी इजाजत है कोट एंड कोट्स में उसको कवर करना चाहती हूं। मौलाना फजलुर रहमान की अगर मैं पास देखती हूं तो ही ऑलवेज वर्क फॉर समबडी, always worked and he in return he needs money. Unfortunately jo Pakistan ke Islam ke followers hain aur taleem ka yahan fukdan hai, they are blindly supporting him. Unhone kaha hai ki agar ladna awam ne hai to fir fauj kis liye hai, tankha lete hain, bahut bada lafz keh diya, unki zimmedari hai. और जाहिर है बहुत से लोगों ने इस पे दिया है। उन्होंने एक और चीज जो ये कही कि उन्होंने कहा कि अपीलों के तराज में समय उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज अकेले नहीं जीत सकती, बल्कि पूरी कौम रियासत दी और उनको अपना करना होगा। और यानी उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव कह दिया आर्मी के बारे में। हालांकि यस, आर्मी की भी गलतियां हैं, जरूर फॉर श्योर हैं। आपने ये भी लफ्ज कहा कि हमारा जो पिछले ایک عرصہ ہے اس کے بیچ میں ہم پاکستان ہیز ڈن ویری مینی رانگ ڈیسیشنز اینڈ پیئنگ دا پرائز. مگر اب سوال یہ ہے کہ مولانا نے اس سٹیج پہ جب افغانستان بھی ہمارے اگینسٹ آ گیا, انڈیا بھی ہمارے اگینسٹ ہے, اسرائیل ایکٹیولی ورکنگ ان بلوچستان, اور پرسو بلوچستان کے بیچ میں اتنا برا واقعہ ہوتا ہے, کیا سوجی تھی مولانا کو یہ سٹوپڈ بیان دینے کی؟ آئی انڈرسٹینڈ آرمی کی غلطیاں ہیں.
میں گیو می الاؤ می ٹو سے کپل آف تھنگ بفور آئی کم ٹو دا آنسر آف دس.
آل یورز سر, آل یورز.
دیکھیے میں یہ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں بچوں سے بات چیت کرنے, اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں قائد اعظم اور علامہ اقبال, ان کو ہم نے المیرا میں بند کر دیا ہے. اینڈ وی فیل ہیپی کہ ہم شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہیں, نیچے کو پڑھ رہے ہیں, ہم کافکا کو پڑھ رہے ہیں, ویرز ان کے فرمودات ہیں ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے. سو میں یہ کہتا ہوتا ہوں نہیں کہ اگر آپ صرف دونوں سے ایک ایک ان کا جو کوٹیشن ہے وہ آپ اڈاپٹ کر لیں تو ہم ایک ڈفرنٹ سوسائٹی ہو سکتے ہیں. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ڈیوٹی ٹو دا اسٹیٹ کمز فرسٹ, دین ٹو یور پروونس, دین ٹو یور ٹرائب, دین ٹو یور ویلج, اینڈ دین ٹو یو یور سیلف. سو میری ہر کسی سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پہلے یہ ایکویشن ٹھیک کر لیں. ہم سم آف دا ادر, مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ابھی تک پاکستان کو ٹاپ پہ نہیں رکھ سکے. ہمیں ہمارے اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جو آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا, جس کسی کا جب آپ ایکشن اسے اینالائز کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ تھا, پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ سپریم نہیں تھا. اور دوسرا میں علامہ اقبال کے بارے میں کہتا ہوں کہ صرف خود ہی کا کانسیپٹ اٹھا لیں کہ اپنے مارکس کے لیے, گریڈ کے لیے بیک نہ کریں. ناؤ کمنگ ٹو دا آنسر, دیکھیں پاکستان ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹرائیکا, ایک طرف وہ ہے جو کہ انڈیا, اسرائیل اور افغانستان, دوسرا ابھی ہم نے انڈیا کے خلاف ایک سال پہلے ان کے ساتھ ہم نے جنگ لڑی, افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں, تیسری طرف ایران سے بھی ڈارک کلاؤڈز ایمرج ہوئے. اگر ایران سبڈیو ہو جاتا اور وہاں پہ پرو اسرائیل گورنمنٹ آ جاتی تو انڈین جرنلز نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ہم پاکستان کو تین ڈائریکشن سے پریس کریں گے. اور اس ساری چیزوں سے ٹاپ اٹ آل ایک رائبلری چل رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا ایز ویل ایز چائنا اینڈ یو ایس. اس میں بھی ہم افیکٹ ہوتے ہیں. اس ٹائم کے اوپر ہماری لیڈرشپ کو, چاہے وہ پولیٹیکل ہے, ملٹری ہے, ریلیجس ہے, سب کو بڑا میچور بیہیو کرنا چاہیے. مولانا نے جو الفاظ یوز کیے ہیں ہائیلی ان اپروپریٹ. آپ دیکھیں جو آرم فورسز ہیں ہسٹوریکلی وہ رہی ہے ماتھے کا چھپر کسی بھی سوسائٹی کا, لیکن اگر آپ الفاظ ایسے پک کریں کہ کوئی کہے کہ جی آرم فورسز جو فوجی جو ہے وہ تو چوکی دار ہے, سو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کو گڈ اسٹینڈ میں نہیں لے گا. آپ کی بات اپنی جگہ پہ, لیکن جو جس طریقے سے جو الفاظ کا آپ نے چناؤ کیا,
چوائس آف دا ورڈ,
وہ میرے نزدیک اس نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے 2002 سے لے کے 2017 تک آلموسٹ فرنٹ لائن کے اوپر اس جنگ میں حصہ لیا, اور اس جنگ کا پیپر میں نے بک بھی لکھی وچ از ٹائٹل فائٹنگ شیڈوز. یہ وہ زمانہ تھا 2007-08 کے جماعت اسلامی کے جو امیر تھے اس وقت, انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تھا کہ فوجیوں کے جنازے جو ہے وہ حرام ہیں اور حکیم اللہ مسعود کا جنازہ جو ہے حرام ہے. اب دیکھیں یہ کتنے برے طریقے سے یہ ہمارے سولجرز کو ڈی موٹیویٹ کریں گی چیزیں, کہ ایک بندہ سیاچن کے اوپر بیٹھا ہوا اور آپ پیچھے سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں گے وہ تنخواہ لے رہا ہے. آپ, میں کہتا ہوں کہ آپ 10 times زیادہ تنخواہ لے کے ذرا وہاں پہ ایک رات گزار رہے ہیں.
میں سر آپ سے 110% ایگری کرتی ہوں. پاکستان کی فوج کے جوان, اور مجھے آپ نے سیاچن کا ذکر کیا, میں نے بلکہ ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ سیاچن پہ جو جوان جا کے وہاں کام کرتے ہیں, میرا خیال ہے ان کی مدت کی ملازمت 5-10 سال, کیونکہ ان کی باڈی ریفیوز کر جاتی ہے. उनका उनमें जिन चीजों की कमी हो जाती है बिकॉज जिस हाइट के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं। सर मैं यहाँ पे आपको लेके जाना चाहती हूँ, जनाब ISPR ने जो अपना बयानिया दिया था उसके नतीजे में मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा, और आई टोटली से कि मौलाना फजल रहमान ये हमारे पॉलिटिशियंस, ऑफकोर्स मैं आई विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस, बट दे कम दे रूल पाकिस्तान, और जब उनका टेन्योर खत्म होता है तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इनके बड़े बड़े घर प्रॉपर्टीज एसेट्स पाकिस्तान से बाहर है। मैं आई टोटली एग्री विद दिस, इनके बच्चे इंतहाई बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे होते हैं, मगर सेम आम फौजी तो बेहतरीन है, मगर सर ये जितने हमारे आला अफसरान हैं उनके बच्चे भी सर बाहर हैं। मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ किंग सिटी है, आप यकीन कीजिएगा बेशुमार जर्नलों की मुझे पता है उनके जो फार्म हाउसेस हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, परवेज मुशर्रफ साहब की प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे जो अपर क्लास है, आपने भी एक और लफ्ज कहा कि आप स्टूडेंट्स को जब लेक्चर देते हैं, सर अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो आप मुझे मेरे सामने कह दीजिएगा, मैं आई एम नॉट हिपोक्रेट एट ऑल। आपने अभी स्टूडेंट्स को एक लेक्चर, आपने स्टूडेंट्स को जब आप जाके लेक्चर देते हैं तो आप उनको ऑनेस्टी का लेसन देते हैं, मगर जिंदगी में हमेशा रहा कि यंग जनरेशन ऑलवेज अपने लिए एक रोल मॉडल तलाश करती है। पाकिस्तान में रोल मॉडल कौन है? पाकिस्तान के जितने रोल मॉडल्स हैं देसी, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो आर्मी के आला अफसरान हैं, उनकी DHAs हैं, अगर वो आपके ब्यूरोक्रेसी को देख रहे होते हैं तो आप यकीन कीजिएगा एवरीबडी इज करप्ट, दे आर लुकिंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट। किस खुदी की हम बात करते हैं? अब यंग जनरेशन जिनके